आगे है जी आयत नंबर 11 से 20, 11 टू 20, रुकू नंबर 7, बशरी कमजोरियां। वलो युअज्जिलुल्लाह लिन्नासि शर्रस्ते जालहुम, और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़े कर दिया करता जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी कबूरा हो चुका होता, यानी खुद अपनी ही बददुआओं की वजह से हलाक हो चुके होते। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं, इनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहें, और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी बैठे भी खड़े भी, फिर जब हम इसकी तकलीफ़ इससे हटा देते हैं तो ऐसा हो जाता है कि गोया इसने अपनी तकलीफ़ के लिए जो इसे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही नहीं था। ज़रा सा अपना मुहासबा करें, सच नहीं है? इन हद से गुजरने वालों के अमाल को इनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया है, और हमने तुमसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए थे, और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते? हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या पता चला कि जैसी करनी वैसी भरनी। फिर इनके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुम को जानशीन किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो, और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं, यूं कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप यूं कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ तरमीम करूँ, यानी अमेंडमेंट, बस मैं तो इसकी पैरवी करूंगा जो मेरे पास वही के ज़रिए पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा रखता हूं। आप यूं कहिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना मैं तुमको पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह तुमको इसकी इत्तला फरमाता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तक तुम में रह चुका हूँ। फिर क्या तुम अक्ल नहीं रखते? बस इस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए? यकीनन ऐसे मुजरिमों को असलन फलाह ना होगी, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना इनको ज़रर पहुंचा सके और ना इनको नफ़ा पहुंचा सके, और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ों की खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में? वो पाक और बरतर हैं इन लोगों के शिर्क से, और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ पैदा कर लिया। और अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले से ठहर चुकी है, तो जिस चीज़ में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इनका कतई फैसला हो चुका होता। और ये लोग यूं कहते हैं कि इन पर इनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती? बस आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को मालूम है, बस तुम भी मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। क्या पता चला कि इन आयात में देख रहे हैं आप बार बार तकरार है, इस कुरान को बदलो, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं। ये है इस बारे के थीम में बात। इस सूरत में ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे ना, तो कुरान पे जो रिएक्शन था मक्का वालों का ख़ास तौर पे, वो है मक्की सूरत में मक्का ही की बातें। आज 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, आज भी लोग कुरान के बारे में कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात रखते हैं, कहते हैं चेंज इट, लिबरल हो जाओ, दौरे हाजिर के तकाजे, आज के दौर में, ये तो माजी में था, ये आज नहीं, ये कल नहीं। तो ये जुमला जो आयत नंबर 15 में है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इत्तिबी कुरान इन गैरी हाजा औ बद्दिल हो, नया लाओ, ब्रिंग द न्यू वर्जन। नया नहीं ला सकते, चलो फिर इसको बदलो, निकालो सूरत तौबा इसमें से, अमेंड कर दो इसको, सूरत नूर निकाल दो, सूरत अहज़ाब निकाल दो, सूरत मुनाफिकून निकाल दो, वी डोंट लाइक दीज सूरास, ये एटीट्यूड। और आज के मुतालबे क्या अमली तौर पे गैर मुस्लिम इस तरह की आप कह सकते हैं कि छेड़खानियाँ कर रहे हैं मुसलमानों को? एक शख्स ने किताब लिखी, नॉन मुस्लिम था, व्हाट काइंड ऑफ कुरान डज वेस्ट नीड, किस किस्म का कुरान वेस्ट चाहता है? उसने उसमें अमेंडमेंट दे दी, समझ आ गई कि वेस्ट में रहने वालों को किस किस्म का कुरान चाहिए। अब पता है कि एक अल्लाह के बंदे ने उसके जवाब में एक बुक लिखी, व्हाट काइंड ऑफ West does Quran need? That is intellectual war. ये करने की ज़रूरत है. हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने ऐसे बंदे रखे हैं कि जो ईंट का जवाब पत्थर नहीं तो ईंट से तो दे सके. अगर आप यकीन करें इस कुरान की खूबसूरती को, जस्ट अनकवर, और वेस्ट की बदसूरती को डी ग्लैमराइज कर दें, आज के दौर का जिहाद से पढ़ेंगे हम सूरह फुरकान में, जाहिद हम भी जिहादन कबीरा. और मक्की सूरतों में जिहादन कबीरा कुरान से हुआ था, हथियार तो उठते ही नहीं थे, कुफ्फ दिया कुम थे. तो ज़रूरत क्या है आज इंटेलेक्चुअल्स को इस किताब से जोड़ने की? फिर इसमें अर्जुन के ऊपर क्या हता है और वो सारी बातें हम अपने लिए अमल के रवैये नोट कर लेते हैं. वही की पैरवी करनी है, अल्लाह की किताब पढ़कर सुनानी है, हद से नहीं गुजरना, जुल्म नहीं करना, रब की नाफरमानी नहीं करनी और अल्लाह पे झूठ नहीं बांधना. इसके बाद रुकू नंबर 8 है, 21 से 30, इंसान की एहसान फरामोशी. व इज़ा ज़क़नन्ना सराहमतम, और जब हम इन लोगों को इस अमर के बाद कि इन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का मज़ा चखा देते हैं, तो वो तो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगते हैं. आप कह दीजिए कि अल्लाह तदबीर करने में तुमसे ज़्यादा तेज़ है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं. वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुश्की और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियाँ लोगों को मवाफिक यानी सूटेबल हवा के ज़रिए से लेकर चलती हैं और वो लोग इनसे खुश होते हैं. इन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से इन पर मौजें उठती चली आती हैं और वो समझते हैं कि बुरे आ घिरे. इस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तो हमको इससे बचा ले तो हम ज़रूर शुक्र गुजार बन जाएंगे. अभी हम इस आयत पे बात करेंगे रुकू के एंड पे, इकरमा बिन अबी जहल के बारे में. फिर जब अल्लाह ताला इनको बचा लेता है तो फौरन ही वो ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं. या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नमा बग़्युकुम अला अन्फुसिकुम. ज़रा सा सोचिए अल्लाह सुबहान तआला कैसी खूबसूरत बात कर रहे हैं. ऐ लोगो, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ही लिए बवाल होगी. किसी खुशी के मौके पे अगर इस आयत का तर्जमा बड़ा बड़ा करके लिख दिया जाए ना पूरे शादी हॉल, पार्टी हॉल, क्लब, कॉन्सर्ट की जगह पे, शायद किसी एक का दिल बदल जाए कि जो आज मस्ती आई है ना, इसकी तुम्हें दुनिया में भी अभी थोड़े दिन में सजा मिलेगी. कोई बीमारी आएगी, घर टूटेगा, मियाँ बीवी में नफरत आएगी, कहीं नज़र लगेगी, कहीं चोरी होगी, कहीं हसद होगा, क्योंकि तुम उससे सरकश हो गए थे, मैंने आज तुम्हें सीधा करना है. आखिरत तो बात की बात है, बगावत और सरकशी की सजा दुनिया में भी मिलती है. दुनियावी ज़िंदगी के चंद फ़ायदे हैं, फिर हमारे पास तुमको आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया धरा तुमको बतला देंगे. कहते ना 100 दिन चोर के एक दिन शाखा, कब तक? आज आंखें बंद हुई क्यामत शुरू, ममात फ़कत क़ामत क़ियामत. और ये दुनिया जिस पे रीझते हो, बस दुनियावी ज़िंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे ज़मीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाई खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली, यहाँ तक कि जब वो ज़मीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और इसकी खूब ज़ीबाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज़ हो चुके हैं, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म अज़ाब आ पड़ा. इमेजिन कीजिए अज़ाब का हुक्म आ चढ़ा. ज़िंदगी एक ढलता सा है, जितनी मर्ज़ी मौज मस्ती कर लीजिए, एकदम ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सब ख़त्म हो गया. यहाँ तक कि जब वो ज़मीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी, ज़रा सा सोचें आप इसको, और इसकी खूब ज़िबाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज़ हो चुके, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म अज़ाब आ पड़ा, बस हमने इसको ऐसा साफ़ कर दिया कि गोया कल वो मौजूद ही ना थी. बस हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं. वल्लाहु यदुकुम इला दारिस सलाम, और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और जिसको चाहता है राह रास पर चलने की तौफीक देता है. जिन लोगों ने नेकी की इनके वास्ते खूबी है और इससे भी बढ़ कर के इनके चेहरों पर न स्याही छाएगी और न जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम। और जिन लोगों ने बद काम किए, इनकी बदी की सज़ा इनके बराबर मिलेगी और इन पर जिल्लत छाएगी। इनको अल्लाह ताला से ना कोई बचा सकेगा, गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए, स्याहियों पे स्याहियां। ये लोग दोजख में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। और वह दिन भी काबिले ज़िक्र है जिस रोज़ हम इन सब को जमा करेंगे। फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, स्टॉप हियर, फिर हम इनकी आपस में फूट डाल देंगे। जहन्नम के अज़ाबों में एक अज़ाब लड़ाई झगड़े, वो घर भी जहन्नम बन जाता है जहाँ झगड़ा रहे। और इनके वो शुरका कहेंगे, क्या तुम हमारी इबादत नहीं करते थे? सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर कि हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी ना थी। पता है ये कौन लोग हैं? ये वो नेक बुजुर्ग हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों को अल्लाह से जोड़ते रहे और उनके मरने के बाद लोग उनके मज़ार बनाकर उनकी कब्रों पे मजावर बन के उन्हीं को खुदा बनाने लगे, या कम अज़ कम कुछ शरीक बना दिया कि अच्छा इधर से ये मिलेगा वो मिलेगा। आप आयत का नंबर नोट करके जाके तफसीर सुन लें। वो कहेंगे हमने तो नहीं कहा था कि हमारी कब्रों पे आके ये मेले ठेले करना, ये बात हो रही है। इस मुकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच पड़ताल कर लेगा और ये लोग अल्लाह ताला की तरफ जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे। और जो कुछ झूठ बांधा करते थे सब इनसे गायब हो जाएंगे। क्या पता चला कि अल्लाह ताला लोगों को मौके देता है कि मुझे पहचानो, अल्लाह ताला की तरफ से मौके भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग सरकशी पे आ जाते हैं। इन नामा बाग युकुम अला अनफुसिकुम। अब एक बंदा एक दफ़ा सरकशी करता है, कुछ नहीं होता, कहता कुछ नहीं होता दोबारा करो, तीन चार दफ़ा कुछ ना होना तो ठीक बन जाता है। देखिए बच्चा है ना, गलत काम कर रहा है, पहली दफ़ा करेगा ना तो पीछे मुड़ के देखेगा, अम्मा देख रही हैं, अभी आती हैं अभी आती हैं, अभी डांटेंगी, अम्मा नहीं आई, अम्मा ने कुछ नहीं कहा। दोबारा करेगा फिर ज़रा देखेगा, कोई नहीं देख रहा, फिर तो पूरी अलमारी में से कपड़े बाहर निकाल देगा। कुछ लोग यही सोचते हैं, बिल्कुल बचकाना हरकतें हैं। जब अल्लाह की पकड़ ना आए तो मत सोचिए कि अल्लाह देख नहीं रहा, वो देख रहा, लेकिन आगे तीसवें बारे में आप पढ़ेंगे इन रब्बक लबिल मिरसाद, खात लगाई हुई। किसी ने शिकार को पकड़ना तो एकदम नहीं जाके पकड़ता, पहले चेक करता है किधर से गोली लगेगी, किधर से पकड़ूं, जाल कहाँ बिछाना है, क्या करना है। अल्लाह ने दुनिया में आपके मेरे लिए बहुत सारे मामलात रखे थे जिसमें हमें दिखाना है। और इसी के अंदर फिर इकरमा की बात है। आप देखिए कि समंदर के सफ़र में सुकून हो, कश्ती मंजिल की तरफ रवान दवा हो, तो उसके मुसाफिरों के लिए एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। उस वक्त उनके अंदर एक झूठा एतमाद होता है, वो कहते हैं कि सब ठीक है, अब तो कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में समंदर में तूफान आ जाए, हवाएं इधर से उधर उठें, पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी मौजें मुसाफिरों को जब चारों तरफ घेरती हैं तो बड़ा सा बड़ा जहाज भी एक तिनके की तरह चकोले लेता है। आप में से किसी ने कभी ओवरनाइट सफ़र किया बहरी जहाज में? मैं कहूँगी कि ना बैठे, लेकिन अगर आप कभी बैठे तो आप कभी उस क्रूज में बैठिए जो ओवरनाइट सफ़र करते। हम नए नए भी नॉर्वे आए थे तो किसी ने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें दे दिए टिकट्स के, जाइए वहाँ नॉर्वे में शाम 4 बजे एक जहाज चलता है, चलते चलते फिर सारी रात चल के सुबह के करीब वो कुछ डिफरेंट है, कोई डेनमार्क जाता है और कोई जर्मनी वगैरह, तो वहाँ 2-3-4 घंटे रह के वापस आता है। अल्लाह की बना सारी रात बाहर अरशे पे गुजारी कि मरना है तो खुले आसमान के नीचे मरे। दिन में ठीक था, रात को कश्ती ऐसे जहाज, क्योंकि वो कहते हैं कि बंद कर देते हैं इंजन और हवाओं के दोष पे हो जाता है। कहा अल्लाह हमें इधर नहीं मारना। मक्का वाले भी कुछ ऐसी ही हरकत करते थे, जब समंदरों में उनकी कश्तियाँ फंस जाती थी ना तो फिर वहाँ जाकर वो कहते थे कि यहाँ हमारे ज़मीनी खुदा नहीं आ सकते, यहाँ अब आसमानी खुदाओं को पुकारो। और फिर यही चीज़ इकरमा बिन अबी जाहल की हिदायत और कबूल इस्लाम का ज़रिया बन गई। इनके बारे में पहले तो एक रिवायत सुन लीजिए। जब मक्का फतह हुआ तो इकरमा बिन अबी जाहल डर के भाग निकले और कश्ती पर इस ख्याल से सवार हुए कि मुल्क हबशा चला जाए, लेकिन बाद तुंद तेज ने कश्ती को घेर लिया तो कश्ती वालों ने एक दूसरे से कहा, अखलिसू लिरब्बिकुम अद्दुआ, अब खालिस होकर अपने रब को पुकारो। फ़ैन्नहु ला युनज्जी हाहुना इल्ला हुआ, अब यहाँ और कोई नहीं निजात दे सकता सिवाय उसके, वही यानी अपने रब को खालिस होकर पुकारो, इसके अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। ये बात सुनकर इकरमा ने कहा, वल्लाही अल्लाह की कसम, लाइनकान ला युनज्जी फिल बहरी गैरी हूँ फ़ैन्नहु ला युनज्जी फिल बर्री ऐजा। कहने लगे, अल्लाह की कसम, जो यहाँ निजात नहीं दे सकते वो खुशकी में भी नहीं, यदि मरे लात मनात उज़ा, अगर यहाँ नहीं आ सकते तो फिर वो वहाँ भी नहीं आ सकते, वहाँ उनके दिल की कली के लिए। फितरत पे कहना चाहिए जो पर्दे आ गए थे हटे। कहने लगे कि अल्लाह मुजबर अहद है कि अगर मैं यहाँ से सही सलामत निकल गया तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रख दूंगा और मैं आपको ज़रूर रऊफ़ुर रहीम पाऊँगा। ये सुनन नसाई की रिवायत थी जो आपको सुनाई, और इनके हालात ज़िंदगी आप और भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा उम्मत के फिरौन का बेटा अल्लाह इस्लाम के लिए कैसे चलता है। बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत सारे लोग दीन पे इतने नहीं हैं जितना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनकी औलादों ने होना है। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी औलादों को दीन में हमसे आगे करें। जितना ज़्यादा अपने बच्चों को आज इस कुरान से जोड़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से वो हिदायत पे होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक का कौल है कि अपनी औलादों को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। बिल्कुल इसी तरह से ये मौका और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इकरमा जैसा खूबसूरत बेटा जो आपने अबू जहल को दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि अबू जहल के लिए वो फ़ायदा मंद नहीं हुआ, क्योंकि औलाद की नेकियां पाने के लिए अपनी कुछ नेकियां भी चाहिए होती हैं। अकाउंट तो खुला हो, पैसे तो कोई फ्री डिपॉजिट कराएगा ना आपके नाम पे। ईमान और इस्लाम के साथ जिनके अकाउंट खुले हैं उनकी औलादों की हर नेकी खुद ब खुद ऑटोमेटिक डिडक्ट होती जाएगी। आप थले शुरू है ऑटोमेटिक डिडक्शन, और वो वहाँ उनको मिलेंगी। फिर आपको कहना नहीं पड़ता, ज़रा ये खाना आगे रखो, मैं अपने अम्मी अबू को बख्श दूँ। अच्छा, मैं अल्लाह जी इस कुरान का सवाब अपनी अम्मी को देती हूँ। यानी आप भूल गई तो वो सवाब ही ना गया बेचारी अम्मी जी को, और वो इंतज़ार ही करती रही। नहीं, खुद बखुद जाता है। सही मुस्लिम की रिवायत, इज़ामात अल इंसान इनक़ते अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका सारा अमालनामा बंद हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, और उसमें पहली ही चीज़ वलदुन सालेहुन यदू लहू बातहू, नेक औलाद उसके बाद उसके लिए दुआ करती है, उसका नाम आता है। तो बिल्कुल ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी औलादों को दीन के साथ जोड़ सकें। इसके अलावा ये कि जो हज़रत इकरमा थे, अल्लाह ने इनको फिर इतना अच्छा सहाबी बनाया, और ये पलट कर यहाँ से वाकई फिर बच गए तो वापस भी ये घर नहीं गए, बल्कि किधर गए, नबी के पास। ये इश्तहारी मुजरिम थे, आज इसको कहते हैं ना कि वो जिनको ज़िंदा मुर्दा ले आओ, क्योंकि इनके क्राइम्स बहुत थे। लेकिन इनकी बीवी ने फिर अल्लाह के नबी से पनाह ली थी कि अल्लाह के नबी अगर इकरमा आ जाए तो आप उनको मौका देंगे। तो अल्लाह के नबी का मकाम लोगों को पकड़ना थोड़ी था, आप तो बचाते थे। और इस तरह फिर इकरमा ऐसे इस्लाम के सिपाही बने, इनके हालात ज़िंदगी पढ़ें। दुआ करें रमज़ान के बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखें जिससे सहाबा की ज़िंदगियों के नक्शे हमारे सामने ऐसे खुल जाएं कि हम भी उसमें चलना शुरू हो जाएं। और इसमें हमने एक आयत पढ़ी है जिसका टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, ज़िंदगी एक ढलता साया, लाइफ इज़ अ फेडिंग शैडो। लेकिन हकीकत है कि इंसानी ज़िंदगी क्या है, बच्चा छोटा सा आता है और फिर बड़ा होता है, और अचानक कभी ज़िंदगी में फसल कट जाती है, जवान मौत हो जाती है। वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर पे बुलाता है। लेकिन क्यों हम दुनिया की ज़ाहरी चीज़ों पे धोखे खा लेते हैं? इस टेम्परेरी घर को हम मुस्तकिल घर समझते हैं, किराए के घर को हम अपना घर समझने लग जाते हैं। इधर से आपको निकलना पड़ेगा। एवरी थिंग इज़ टेम्परेरी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और जन्नत की जो खूबी है उसके ऊपर हदीस सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ जन्नत की तरफ अल्लाह आपको बुला रहा है। तो हदीस में आता है अनस बिन मालिक से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है, जन्नत इसके हक में दुआ करते हुए कहती है, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा, और जो कोई तीन बार जहन्नम की आग से पनाह मांगता है तो जहन्नम इसके हक में दुआ करते हुए कहती है अल्लाहुमाजिर हु मिनन्नार। आज तक आपने क्या पढ़ा? अल्लाहुमाजिर नी मिनन्नार। और हदीस क्या कह रही है? जहन्नम कहती अल्लाहुमा अजीर हु मिनन्नार, अल्लाह इसको आग से बचा। ये सुनन इब्ने माजा की रिवायत है 4340। तो आपको मुझे उस जन्नत की तलब है। हदीस में आता है कि जब जन्नत वाले जन्नत में और दोजख वाले दोजख में दाखिल हो जाएंगे तो ही पुकारने वाला पुकारेगा। आप ज़रा इसको इमेजिन कीजिए, आप जन्नत में इंशाल्लाह, अल्लाह आपको लेके जाए। क्या कहेगा जन्नत वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब का एक वादा अभी बाकी है जिसको पूरा होना है। जन्नत वाले कहेंगे वो क्या है? क्या हमारे पलड़े भारी ना कर दिए गए? क्या हमारे चेहरे रोशन ना कर दिए गए? क्या अल्लाह ने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया? और क्या हमें आग से बचा नहीं लिया? इसके बाद फिर उनके और रब के बीच में से एक हिजाब उठा लिया जाएगा और फिर वो अपने रब को देखने लगेंगे। बस अल्लाह की कसम, कोई नेमत जो अल्लाह ने उनको दी थी वो इनके लिए अल्लाह को देखने से ज़्यादा महबूब ना होगी और ना इससे ज़्यादा इनकी आंखों को ठंडा करने वाली। फवल्लाही मा आताहुम शैयन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़री इलैह वला अकर्रा, ठंडा करना, कर्रा कुर्रतुल ऐन, वला अकर्रा लिया युनिहिम। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 18914। अल्लाह जालना मिनहुम। कौन अच्छा रहा? 4 दिन की तकलीफें सहकर वहां की जन्नत पाने वाला, 5 मरले का घर देकर जन्नत के मोतियों के सोने के महल लेने वाला, या इधर ही सब छोड़कर आहें भरने वाला? किसी बाहर के मुल्क में घर बनाया हो और खुदा न खास्ता डेपोटेशन के ऑर्डर्स आ जाएं, विद इन फ्यू डेज निकल जाओ। तो अमेरिका में एक ऐड आता है, मस्ट गो, एवरीथिंग मस्ट गो। ये ऐड का मतलब पता क्या है? लाख वाली चीज़ 100 में ले जाओ। वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से। मिलियंस के घर चंद हजार डॉलर में बेच के लोग आ जाते हैं कि एक हजार निकलते हुए हाथ में तो पकड़ें जो आता है। तो आपका मेरा सब कुछ इस दुनिया में रह जाना है। अल्लाह करे कि हम वहाँ के लिए तैयारियाँ करें। इसके लिए कुछ रवैये नोट करते हैं। अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए उसे पुकारना है, शुक्रगुजार होना है, अल्लाह की आयात में गौर व फिक्र करना है, एहसान करना है, सरकशी नहीं करनी और शिर्क नहीं करना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे है आयत 31 से 40, रुकू नंबर 9। हिदायत चाहने वालों को मिलती है, अल्लाह आप सबको भी ज़रूर देगा क्योंकि आप चाहने की ख्वाहिश में रोज़ आकर बैठ जाते हैं। कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्द, आप कहिए वो कौन है जो तुमको आसमानों ज़मीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से, और वो कौन है जो तुम्हारे कामों की तदबीर करता है? ज़रूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो इनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते? सो ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा रब्बे हकीकी है, फिर हक के बाद और क्या रह गया? फमा ज़बादल हक इल्लद्दलाल। इस हिस्से को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। और हक के बाद और क्या रह गया सिवाय गुमराही के? फिर कहाँ फेरे जाते हो? इसी तरह आपके रब की ये बात कि ये ईमान न लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। आप यूं कहिए, क्या तुम्हारे शुरका में कोई है जो पहली बार पैदा करे और फिर दोबारा भी पैदा करने वाला हो? आप यूं ही कहिए कि अल्लाह ही है जो पहली बार पैदा करता है फिर वही दोबारा पैदा करेगा। तुम कहाँ से फेरे जा रहे हो? आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। तो फिर क्या वो शख्स जो हक का रास्ता बताता हो वो ज़्यादा इत्तबा के लायक है, यानी टू फॉलो हिम, या वो शख्स जिसको बताए बगैर खुद ही रास्ता ना सूझे? बस तुमको क्या हो गया कि तुम कैसे फैसले करते हो? और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कुछ भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब खबर है। और ये कुरान, फिर नोट कीजिए लफ्ज़ कुरान को, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर आप ही से खड़ लिया गया हो, بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، یا جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوس ان کو اس کا آخری انجام بھی نہیں ملا. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، بس دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. آیت 35 کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 4772. اور آپ نے دیکھا کہ اس رکوع میں ہدایت کا بہت تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی بھی بات ہے. پتہ کیا چلا کہ اس پوری دنیا میں اگر کچھ لوگ اپنے لیے ہدایت کی خواہش رکھنے والے کھڑے ہو جائیں، تو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اس پوری دنیا کو ہدایت مل جائے. ہم اپنے لیے عمل کے کچھ رویے نوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ شرک کو ختم کرنے کی جو خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کی ہیں، اگر ہم اس کو پڑھ جائیں سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے. تو پہلی چیز تقویٰ، تقویٰ اللہ سے ملاقات ہے. دیکھیں اب کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے اسے ملاقات نہیں ہوگی. تو جب آپ کے دل میں تقویٰ آتا ہے نا، تو پھر آپ کو جنت بھی نظر آنے لگتی ہے. پھر حق کی طرف رہنمائی کرنا، سچائی کو نبھانا، قرآن پر ایمان لانا، نافرمانی نہیں کرنی اور گمان کی پیروی نہیں کرنی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آگے ہے آیت نمبر 41 سے 53، رکوع نمبر 10. انسان خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنے محاورے میں؟ اپنے پاؤں خود کلہاڑی مارنا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي. اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رکھ رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں. واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پس جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو. ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب وہ ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں. آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر وہ جب آ ہی بڑھے گا تب اس پر ہی مان لو گے؟ چند سیکنڈ غور کریں. جب زلزلہ آ جائے گا پھر مانو گے؟ جب سیلاب آئے گا پھر توبہ کرو گے؟ ہاں آپ مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے ہوئے ہی کا بدلہ ملا ہے. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ای و ربی. بڑا خوبصورت انداز ہے، हाँ कसम है मेरे रब की, वो वाकई सच है, और तुम किसी तरह से अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। आप देखिए, सिर्फ कुरान का तर्जुमा भी काफ़ी नहीं है इस हकीकत को समझने के लिए कि गफलत से जीने वालों का अंजाम बहुत बुरा है, और जन्नत में ना जा सके तो कहाँ जाएंगे। देखिए दुनिया में आप नहीं जा सके तो नहीं गए, इधर तो बैठे हुए हैं ना, ये दुनिया तो ख़त्म हो चुकी, कोई वापसी का रास्ता नहीं है, जन्नत का दरवाज़ा खुल नहीं रहा, जहन्नम। आप लिफ्ट में और बिजली चली जाए, क्या हाल होता है, कब्र से निकलें और आगे जहन्नम हो क्या बनेगा। अपनी पूरी कोशिश करके मैं और आप इस जहन्नम का ईंधन बनने से खुद भी बच जाएं और दूसरों को बचा लें। दिल से दुआ किया करें हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अपनी जिंदगियों को रोशनियों वाली जिंदगी बनाएं, बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन कॉज है ये, आज के दौर का सबसे बड़ा सोशल वर्क। फायर ब्रिगेडियर बन जाए, वो क्या करेंगे जहन्नम की आग बुझाते हैं। खुदा ना खास्ता घर को आग लग जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, और वक्त पे फायर ब्रिगेड आकर नुकसान से बचा दे, कितने शुक्रगुजार होंगे। तो लोग कितने आपके लिए अहम है जो आपको जहन्नम का ईंधन बनने से बचा रहे हैं। ये किताब पढ़कर आप और मैं जहन्नम की आग को बुझाने का सामान करेंगे। अल्लाह आपके मेरे लिए इसको आसान कर दे। अपने लिए कुछ काम नोट करते हैं जो हमने करने हैं इसके बाद, ताकि हम कल उस बुरे अंजाम से बचें। हिदायत के रास्ते पे रहना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, अपनी जान पे जुल्म नहीं करना, रब को मानना है, सच्चाई का वादा पूरा करना है, जो हमने अल्लाह से वादे किए उनको पूरे करना है, और अल्लाह ताला से मुलाकात को नहीं छुटलाना, और सबसे बढ़ के इल्मे आखरत को फिक्रे आखरत में डालना। अल्लाह आपके मेरे लिए आसान कर दे।